अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम, बैठिए।
बहुत बहुत शुक्रिया।
अरे सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम।
आप है जनाब?
आप खैरियत से हैं?
शुक्रिया। आप उनको पहचानते हैं?
नहीं, शायद पहले क्लिनिक पे आए हो।
डॉक्टर आप मशकूक नजर आते हैं।
मैं जानता हूँ, इसीलिए तो मुझे लंच पर बुलाया।
मेरे एतबार से रानियों के यहाँ ये राइज नहीं कि खवातीन बिद अदा करें। और हाँ, एक अच्छी खबर मेरे पास आपके लिए है।
अच्छा, तो इसका मतलब ये कि दावत तो आप दें और बिल मैं अदा करूँ। कोई बात नहीं, ये बताइए यहाँ ऑमलेट मिलता है?
मैंने मजाक किया, आपने मेरी दावत कबूल कर ली, यही मेरे लिए बहुत अहम है। अच्छा, मैं आपके भतीजे के बारे में गुफ्तगू करना चाहती थी।
मैं हमातन गोश हूँ, आपसे सिर्फ इतनी दरखास्त है कि उसकी जो भी मदद कर सकती हैं उसके लिए जरूर करें। यूनिवर्सिटी में उसके लिए जो मसाइल पेश आए हैं उसके बाद से मैं उसकी मदद से हरगिज पीछे हटने वाला नहीं हूँ। जानती हैं, हम चचा भतीजे होने से ज्यादा आपस में एक दूसरे के दोस्त हैं।
अच्छी बात है, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि क्यों अब तक आपके सिलसिले में उसने कोई बात नहीं की।
तो उसे क्या कहना चाहिए था, वो कोई बच्चा तो नहीं है, तकरीबन 30 बरस उम्र है उसकी।
खुशामदीद, क्या खाना पसंद करेंगे?
माफ कीजिएगा, वॉशरूम किधर है?
पीछे की तरफ।
मेरे साथ आओ। देखो, अगर तुमने जरा सा
भी कसम, मैंने सारे गलत काम छोड़ दिए।
शाबाश शाबाश, अच्छे बच्चों की तरह मेरी बात को ध्यान से सुनो। मैं इस वक्त ड्यूटी पर हूँ और नहीं चाहता कि उस औरत को पता चले कि मैं एक पुलिस हूँ। अगर तुमने कुछ कहा तो इतना जान लो कि तुम्हें उसी जेल में भिजवा दूंगा जहाँ पर तुम थे, समझे?
हाँ जी।
शाबाश, एकदम नॉर्मल हालत में बाहर जाओ। ये जहन में रहे कि मैं एक डॉक्टर हूँ, जानवरों का डॉक्टर। ठीक है, चलो जाओ।
जी सर, जी सर।
माफ़ कीजिएगा
जी,
क्या आप उन्हें जानते हैं?
किसको?
वही जो अभी वॉशरूम की तरफ गए।
अच्छा, हाँ।
काम क्या करते हैं?
डॉक्टर है, मेरे पास एक मोड़ था, मैं उसे ले गया जानवर के अस्पताल, उन्होंने काफी मदद की थी।
हाँ, इस वक्त भी उसी मदद के सिलसिले में तुमसे आहिस्ता आहिस्ता बातें करना चाहते थे ना?
असल में उन्होंने एक गलत दवा दे दी थी जिसके नतीजे में मेरा मोर इसके बाद मर गया।
कब गए थे उनके पास?
एक महीने पहले।
उनका फैमिली सरनेम क्या है?
सच पूछे तो मुझे याद नहीं आ रहा।
फरशीदी, डॉक्टर फरशीदी।
हाँ सही कहा।
इसके मुर्गे को गले का कैंसर हो गया था, मैं नहीं चाहता था कि वो इस बात को जाने। आप तो जानती हैं कि जानवरों की मेडिकल साइंस भी अब तक आम मेडिकल साइंस की तरह कैंसर के इलाज से कासिर है।
बेचारा वो मोर।
क्या आपने कुछ ऑर्डर दिया है?
नहीं, आपका इंतजार कर रही थी।
ये लीजिए, मैं तो कबाब खाऊंगा, वो भी चावल के बगैर।
आपका इंतखाब भी बुरा नहीं है, मैं भी यही खाऊंगी।
वेटर वेटर, जरा सुनना तो, दो कबाब बगैर चावल के, दीगर लवाजमात भी लेना। शुक्रिया। मुझे आपका ये शक बिल्कुल पसंद नहीं आया।
मैंने तो पहले भी कहा ना कि आप पर मशकूक हूँ।
अगर ये बात शाहीन से भी कह दी होगी तो फिर आपका अशर भी उसी मुर्ग वाला होगा।
खैर से तो मैं मुर्ग नहीं हूँ।
ऐसे कुछ हासिल नहीं होगा, हमें कोई गाड़ी करनी होगी जिस पर सारा सामान एक ही बार लाद कर नजात हासिल करें।
आखिर इतना लेट क्यों है हमें लेने के लिए बाबा?
बिन बुलाए मेहमान आ गए थे बेटी, मैंने बताया तो था।
आखिर मोहम्मद अली क्या कह रहा है?
एक राज है, अलबत्ता थोड़ा सा मजाक का खेज भी।
और महनू चेहरी?
उसे तो बिल्कुल नहीं जानता, लेकिन एक अच्छा इंसान है।
बाबा आज का दिन मेरे लिए बिल्कुल अच्छा नहीं था। फरीद की तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, ना तो मुझसे बात करता है ना ही कुछ कहता है। सब मुझे अजीब निगाह से देखने लगे हैं, जैसे कोई बड़ा गुनाह कर बैठी हूँ मैं।
कब से ऐसा हुआ?
इधर एक दो दिनों से, लेकिन आज तो मेरी तरफ निगाह उठाकर भी नहीं देखा, कहने लगा जाओ।
अहमियत ना दो, वो तुम्हारे काबिल ही नहीं है, छोड़ो उसको।
उसकी गलती नहीं, मुझे पता है कि असल मुश्किल कहाँ है। मेरे लिए भी आज का दिन अच्छा नहीं रहा, मुझे लगता है कि मैं जानता हूँ कि मामला क्या है।
क्या हुआ मसूद?
आपको क्या पता है बाबा?
छोड़ो, को खास बात नहीं है, खुद ही संभाल लूंगा।
तय ये था कि हमारी बातें राज नहीं होंगी ना?
हाँ तय पाया था, लेकिन
लेकिन वेकिन छोड़िए और खुदा के लिए बताएं, मैं आपसे एक बात बताना चाहती हूँ जो बहुत ज्यादा अहम है, मुझे आपकी मदद की शदीद जरूरत है।
क्या हुआ मेरी बेटी?
पहले आप बताएं।
ठीक है, मैं मान गया। हकीकत यह है कि मेरे और तुम्हारे दरमियान रابطے की एक अफवाह कॉलेज और वजारत जैसी जगहों पर उड़ी हुई है।
क्या? हाय, ये तो बहुत बड़ी बात है, आखिर ये बात किसने अपनी तरफ से उड़ाई?
लगता है मैं बिला वजह वापस आई हूँ।
तुम बहुत सही वक्त पर वापस आई हो लाइया, अगर तुम लोग मेरे पास ना होती तो नहीं मालूम ये लोग मेरी बातों को कितना मानते, वो भी इस हालत में। लेकिन अब मैं सरबुलंद हूँ, वजारत का जवाब दे दिया यकीन के साथ। कुछ इस तरह के डॉक्टर मोहम्मदी ने मुझसे माजरत खाही की, अगर तुम ना आई होती तो नहीं मालूम कैसे मैं उन्हें अपने जवाब से मुतमईन कर पाता। खुदा का मुझ पर खास लुत्फ करम है।
लेकिन ये बहुत बेइंसाफी है, एक घटिया बात है, नाकाबिल माफी तोहमत है।
वो लोग जो खुद को बहुत सारे कामों से दूर रखना चाहते हैं, हमेशा उनकी शख्सियत मजरूह करने के लिए अफवाहें उड़ा करती हैं। कोई हरज नहीं, मैं तो आदी हो गया हूँ इन बातों का, तोहमत, धांधली, माली बदनवानी, रिश्वत। एक दिन तुम्हारे इल्मी वकार को निशाना बनाएंगे तो दूसरे दिन तुम्हारी इज्जत और आबरू को। उन्हें इनकी हालत पर छोड़ दो।
उन्हें हकीकत क्यों नहीं बता देते?
ये तो करूंगा ही, मैं तुम दोनों का शुक्रगुजार हूं। अब मुझे कोई अफसोस नहीं, उस शख्स को भी ढूंढ लूंगा। अब तुम बताओ रेहाना, फरीद और तुम्हारी बात के अलावा कौन सा नया वाकया पेश आया है?
असल में मेरे साथी जा रहे हैं।
जा रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं?
हमीद, फरीद और शाहीन ईरान से बाहर जाना चाहते हैं, शायद रिजा और इल्हाम भी चले जाएं। मेरे ख्याल से कुछ ही दिनों में उनकी फ्लाइट भी होगी।
उन्होंने कब ये फैसला किया?
काफी पहले, लेकिन मैं और निगार ये सोचते थे कि ये सिर्फ एक तजस्सुस है, लेकिन ऐसा लगता है कि इनका इरादा बिल्कुल पक्का है।
जब तुम्हें पता चला उस वक्त मुझे क्यों नहीं खबर दी?
मैं दिल से चाहती थी कि दोबारा एक साथ बैठें, इसीलिए मैं बिल्कुल फरीद को भूल गई। अब जब सोचती हूँ तो ये लगता है कि उसका मुझसे नाराज हो जाना हक बजाने भी।
जब तुम समझ गई थी उस वक्त मुझसे बताना चाहिए था। ये मसला मेरे मसले से ज्यादा अहमियत रखता है।
नहीं, ज्यादा अहम नहीं है, बल्कि दोनों ही अहम है। मसूद, तुम्हें अपने को नहीं भुला देना चाहिए।
अब तुम हो, जब भी मैं भूल जाऊं याद दिला देना।
ओके, 15 मिनट बाद वहां मिलूंगी। अब चलना होगा शाहीन था, अच्छा लगा कि अपने वादे पर अटल रहे, मेरे लिए पैसे लाया है।
शाहीन कुछ ना समझे वरना सब कुछ खराब हो जाएगा।
डॉक्टर नहीं बताएंगे कि इतनी खोजबीन किस लिए है?
बताता हूँ, मैं शाहीन के वालिद का एहसान मंद हूँ, मकरूज हूँ। वो मेरे लिए यूनिवर्सिटी का खर्चा अमेरिका से भेजते थे। जरा ये बताइए, क्या आपने चार्ल्स डिकेंस का नॉवेल बड़ी आरजुएं पढ़ा है?
हाय, मैं इसकी आशिक हूँ। हमेशा मैं चाहती थी कि स्ट्रीला की जगह होती और मर्दों से इंतखाब लेती।
क्या आपकी वालिदा मैडम हविशाम है?
मेरी मम्मी तो नहीं, लेकिन मेरे ख्याल से आपका कोई भाई मफरूर मुजरिम है जिसे पॉल ने देखा उसके बाद छुपा के आपको पैसे भेजे। अब आप यही काम उसके बेटे के लिए अंजाम देना चाहते हैं।
शाबाश, अब हुई ना बात।
बहरहाल ये आपका लुत्फ करम था जिसकी वजह से शाहीन का काम जल्दी हो गया।
खुदा हाफिज।
मैं खुद ही अदा कर दूंगी।
السلام علیکم.
وعلیکم. کیا ہوا؟
چیک لایا ہوں.
لاؤ دیکھوں. کس کا ہے؟
کیش ہو جائے گا.
وہ تو ہو جائے گا, میں نے پوچھا کس کا ہے.
میرے دوست کا.
ہاں, فریدہ تفنگچی کا نام دیکھ رہی ہوں. یہ وہی ہے نا جسے تمہیں پاس لائے تھے؟ اپنے چچا سے کیوں نہیں لیا؟
کیا تم میرے چچا کو پہچانتی ہو؟
نہیں, میرا مطلب کوئی بھی خاندان کا چچا, ماموں, ان میں سے کسی سے لیے
نہیں. کچھ تو ہے. وہ بدماش تمہارے پاس آیا تھا؟
تمہارا چچا؟ نہیں, میرا مقصد یہ ہے کہ فرید کے اکاؤنٹ میں تو بیلنس ہی نہیں, تو اس کا چیک باؤنس ہو جائے گا. کسی ایسے سے مدد لینی چاہیے تھی جس کے پاس کچھ ہو.
دیکھیں محترمہ, یہ رقم خود میری ہے. میرے چچا ان لوگوں میں سے نہیں ہے جو کسی کے لیے اس قسم کا کام انجام دیں. اگر وہ آپ کے پاس آتے ہیں تو مجھے بتائیں, میں ان کی خبر لیتا ہوں. اب آئیے اپنے اصل بات پر.
آرام سے, جب تمہارا چیک پاس ہو جائے گا تو خود بخود کام آگے بڑھیں گے. البتہ تمہیں دوبارہ پیسے دینے ہوں گے.
لیکن میرے پاس اسے زیادہ دینے کے لیے نہیں ہے, یعنی اس وقت نہیں ہے. میں کسی اور دوسرے کا چیک دے سکتا ہوں.
کتنے کا ہے؟
اس کے علاوہ تقریباً 80 ملین اور ہوگا, لیکن مجھے جلد از جلد ایران سے باہر جانا ہوگا.
کوشش کروں گی. اب دیکھنا یہ ہوگا کہ کب کیش ہوگا یہ چیک. اور ہاں, اپنے خاندان والوں کے بارے میں اتنی جلدی فیصلہ نہ کرو, شاید کچھ ایسی باتیں ہوں جو تمہیں نہیں پتا. خدا حافظ.
خدا حافظ.
امی جان
کیا ہے, کیا کہہ رہے ہو؟
السلام علیکم.
علیکم السلام.
آپ کیوں لڑائی کے موڈ میں ہیں؟
اب تک کہاں تھے؟
دوستوں کے ساتھ تھا. کھانا کیا ہے؟
کچھ نہیں, خود ہی سے کچھ بنا کے کھا لو. تم لوگ تو باہر جانا چاہتے ہو, اپنے کام بھی خود ہی کرو.
اچھا, تو نگار یہاں تھی نا؟
ہاں, یہی تھی. وہ اس کے شوہر کا گھر ہے.
تو اسے اپنے شوہر کا احترام کرنا ہوگا اور اس کی باتوں پر دھیان دینا ہوگا.
اس کے شوہر کو بھی بتانا ہوگا کہ وہ کیا کرتا ہے, کہاں جاتا ہے, کس کے ساتھ.
اچھی بات ہے, تو پھر اس نے سب کچھ آپ کو بتا دیا ہے.
ہاں, بتایا ہے اس نے. اس سے بہتر ہے کہ اپنے گھر والوں کو جا کے بتاتی کہ ہماری بے عزتی ہو.
میں نے آخر کیا کیا ہے؟ صرف کام سے متعلق ملاقات تھی.
اچھا, کام سے متعلق, تو آخر کیوں چھپ چھپ آ کے چوروں کی طرح گلیوں اور سڑکوں پر؟
اس طرح کی بیکار باتوں کا حوصلہ نہیں ہے مجھ میں. کل کلاس اٹینڈ کرنے یونیورسٹی بھی جانا ہے.
اتفاق سے مجھے بھی کل اسکول جانا ہے, لیکن نہیں جاؤں گی جب تک یہ نہ سمجھ لوں گی تمہارے ذہن میں کیا ہے. تم اس وقت تک نہیں جاؤ گی جب تک ساری باتیں مجھ سے نہ بتا دو. سمجھ گئے نا؟
جی ہاں. پلیز ذرا جلدی.
یہ لڑکی کون ہے؟
نگار کا وہم.
تمہاری گاڑی میں بھی بیٹھتی ہے نا؟
ایسا نہیں ہے, میں نے ایک ایجنسی سے بات کی ہے کہ امکان کی صورت میں مزید پڑھائی کے لیے بیرون ملک کا سفر کروں. یہ لڑکی اسی ایجنسی میں کام کرتی ہے.
کیا اس ایجنسی کے پاس کوئی جگہ نہیں ہے جو ان کے ساتھ گلیوں کوچوں میں اور کافی شاپ میں ملاقات کرتے ہو؟ ان کا کوئی آفس نہیں ہے؟ کیا تم اپنے ساتھ نگار کو نہیں لے آ سکتے؟
کیوں نہیں, لیکن نگار اس کے خلاف ہے.
میں بھی خلاف ہوں.
کیوں, جبکہ ان کی تجویز اتنی عمدہ اور منطقی ہے؟
بس کرو, آئندہ تمہیں ہزار غیر قانونی تجاویز ملیں گی. تو کیا موقع پرست افراد کی طرح ان کے پیچھے چل پڑو گے؟
مسئلہ یہ نہیں ہے, ابھی تو میں گیا نہیں ہوں, کسی ذمہ داری سے بھاگ بھی نہیں رہا ہوں, اور میں آپ کو نگار کو بھی اپنے ساتھ لے جانے کی بات کر رہا ہوں.
اچھا, شاباش, ماشاء اللہ, اب ہماری جگہ فیصلے بھی کرنے لگے. نہیں بیٹا, میں تو سوچتی تھی کہ میں نے تمہاری تربیت میں کوئی کمی نہیں کی, لیکن اب سمجھ میں آ رہا ہے کہ غلط سمجھتی تھی.
تو بتانا کیا کروں, انتظار کروں کہ ڈاکٹر خدائی میرے بارے فیصلہ کریں؟
جاؤ ان کی شکایت کرو. کیوں بچوں کی طرح شور مچاتے پھرتے ہو؟
ایک بار ہم نے شکایت کی, کیا ہوا؟ ہماری کلاس میٹ ہماری نگاہوں کے سامنے ماری گئی.
شکایت کرو نہ کہ اعتراض.
تو بتائیں کیا کروں, نہ جاؤں؟ ٹھیک ہے, نہیں جاؤں گا, مجھ میں بحث کرنے کی طاقت نہیں ہے.
اچھا, پھر اپنا دامن جھاڑنے لگے. بیٹے, اب تم بڑے ہو گئے ہو, تم نے شادی کر لی ہے, اب تمہارے ذہن میں جانا سوار ہو گیا ہے, تو اس سال نہ صحیح اگلے سال جاؤ گے. میرا کہنا یہ ہے, صحیح غور و فکر سے کام لو.
ٹھیک ہے.
ریحانہ, اگر میرے ساتھ آنا ہے تو جلدی کرو, دیر ہو جائے گی.
آتی ہوں.
ناشتے کا کیا ہوگا؟
صبح تک نہیں سویا ہوں, کلاس بھی لینی ہے, دیر ہو جائے گی.
بابا, اگر فرید سے ملی تو کیا کہوں اسے؟
پریشان نہ ہو, چل رہے ہیں, راستے میں سوچیں گے.
ये लुकमा तो ले लें वरना कमजोरी हो जाएगी।
बहुत शुक्रिया।
खुदा हाफिज।
उसे देखने से बहुत डर लग रहा है। असल में उसने मुझसे बहुत बदतमीजी से बात की। मेरी बात सुन रहे हैं ना आप?
क्या कुछ काम उसे?
आप ही से तो बातें कर रही थी।
देखो तुम्हारे ख्याल में ये किसका काम हो सकता है?
क्या
मैं समझ गया, मुहम्मद अली वही अहमक लड़का। मुझे समझ में आ गया रहाना।
क्या समझ गए?
उस रात जब तुम मेरे घर आई थी मोहम्मद अली घर में ही था, शायद उसने हम दोनों की बातें सुन ली थी।
आप क्या कहना चाहते हैं? मैं नहीं समझ पा रही हूँ।
हाँ, जब तक ये लड़का हमारे अदाब और रसूम को सीखेगा उससे पहले बहुत सी माकते कर चुका होगा।
आप ये तो नहीं कहना चाहते कि जफा में मोहम्मद अली का हाथ है?
यकीन नहीं है लेकिन पता चल जाएगा। इस लड़के में जो भी बुराई हो एक अच्छाई जरूर पाई जाती है, वो ये कि बहुत सादा मिजाज है, कोई भी बात दिल में नहीं रहती।
हाँ ये तो मालूम ही है, वो पागल थोड़ी है कि हर बात कह दे।
नहीं पागल तो नहीं, लेकिन उस रात हमने ढेर सारी बातें की, शायद वो बेवकूफ लड़का समझा हो कि ओह खुदाया। हमें जल्दी चलना होगा।
चले।
तुम दोनों को क्या हो गया?
मुझसे गड़बड़ हो गई, मेरा ताकुब किया, काफी शॉप में भी मुझे देखा और कल भी मुझे देखा।
तो क्या हुआ?
तुम कह रहे हो क्या हुआ? जब तक मैं निगार को समझाने की कोशिश करूंगा देर हो चुकी होगी। और तुम्हें तो मालूम ही नहीं कि गुज़श्ता शब वालिदा ने मेरी किस तरह से क्लास ली है। उसने जाकर मेरे बाहर जाने की बात अम्मी को बता दी।
ये जो कुछ कह रहे हो मेरी मुश्किलात के सामने कुछ भी नहीं। हम सबका गहरा दोस्त मेरे पीछे पड़ गया और जब तक 15 मिलियन नकद का मुझसे वादा न लिया मुझे न छोड़ा।
झूठ बोल रहे हो।
झूठ कैसा? अगर ये पैसे मुझसे न लेता तो अपने वालिद के कर्जखाओं में से एक को राजी कर लेता कि अब्बा आकर उसका काम कर दे, इस सूरत में मैं भी आराम से रहता।
क्यों उसे पैसे दिए?
काश तुम उस वक्त होते और देखते कैसे बदबख्तों की तरह मेरा पैर पकड़े था। इसके अलावा उसके खुद के पैसे थे, इसके सिवा कोई और चारा नहीं था।
बहुत सादा लो फरीद, तुम्हें ये काम नहीं करना चाहिए था।
मजबूर था मैं, वो रकम खुद उसकी थी।
दोस्तों सर आ रहे हैं।
अस्सलाम वालेकुम, बैठ जाइए।
वालेकुम सलाम, ठीक हो?
अस्सलाम वालेकुम।
देखा
तो फंक्ची साहब, आप बैठे, कुछ काम है आपसे।
बैठ जाओ ना।
मिस नीना ने शाम को फिर से बुलाया है।
ठीक है चली जाना।
चाय पीना चाहेंगे? मंगवाऊं?
नहीं इस वक्त नहीं।
आप हमें कुछ देर के लिए अकेला छोड़ सकती हैं?
सब कुछ खराब कर दिया, बहुत गड़बड़ हो गई। इज्जत और जाती मसाइल की बात क्यों की? मैंने कहा था कि मुझे बताओ क्या करना चाहते हो, तुमने कहा मेरी जिम्मेदारी, अब सारी चीजें तुम्हारे जिम्मे। तुम एकदम आला सतह पर पहुंचने वाले थे लेकिन तुमने खुद खराब कर दिया। डॉक्टर मोहम्मदी ने वजारत तालीम में मेरी बहुत ही बेइज्जती की, पता नहीं कब आकर सुलेमानी से बात कर ली, वो इधर से उधर पलट गए।
मुझे भी उसने फोन किया था, मैंने उससे बातें की, ये साजिश है डॉक्टर।
उससे क्या कहा?
मैंने उससे कुछ नहीं कहा, शायद सुलेमानी अपने को मजलूम दिखाना चाहता है जो इस बात को पेश किया। मैं इनकार कर रहा हूँ, डॉक्टर मोहम्मदी से भी मैंने कह दिया।
क्या कहा?
मैंने कहा कि चूंकि सुलेमानी इस मनसब के खां हैं और मेरा नाम भी है उसमें, तो उन्होंने ये अफवाह फैलाकर मेरे सर डाल दिए ताकि खुद को मजलूम दिखाएं। मुझे क्या पता वो क्या गलत कर रहा है। दूसरी बात यह है कि जब आपस में गपशप होती है तो इस तरह की बातें भी हो ही जाती हैं। जमाने कदीम से ये मसल मशहूर है, कोयले की कान में काम करने वाला काला हो ही जाता है।
डॉक्टर जो दिल में आए करे लेकिन बीच में मुझे न घसीटे। मैं मुद्दतों से सुलेमानी को पहचानता हूँ, वो इस तरह की घटिया बातों से मुबर्रा है। बस इतना ध्यान रखना, जो आग जला रहे हो उससे खुद अपना हाथ न जला लेना।
हम गरीब परवर और मेहमान नवाज लोग हैं, हमारा मजहब और हमारी रसूमात भी ऐसी ही हैं। इसकी जिंदा मिसाल हमारे दरमियान मौजूद एक साउथ अफ्रीकी जवान है, जिसे फारसी भी ठीक ठाक आती है, लेकिन चूंकि हमारी रसूमात से उसे आशनाई नहीं, इसलिए 4 साल गुजर जाने के बावजूद अब भी अपने में ही उलझा रहता है। यानी कुछ ऐसे कामों में अपना हाथ डालता है जो जरा खतरनाक है। उठो मोहम्मद अली, उठो, मैं चाहता हूं कि इन दोस्तों से ईरान में मौजूद अपनी मुश्किलात बयान करो।
मेरे सबके साथ अच्छे रवाबित हैं, सब मुझसे अच्छे से मिलते हैं, कोई परेशानी नहीं है।
देख रहे हो, डर रहा है, क्योंकि जब कभी इसने सच बोलना चाहा, यहां पर किसी ना किसी को जोश आ गया। ये मोहम्मद अली उन लोगों में से है कि जिसे अभी तक ये भी मालूम नहीं कि ईरान में हमारे कौम के जज्बाती लोगों को एक खास खबर कैसे सुनाई जाए। यानी अगर इसे कहा जाए जाओ एक बुरी खबर सुनाओ, आहिस्ता आहिस्ता यह खबर पहुंचाना, तो जाकर कहेगा तुम्हारे वालिद आहिस्ता आहिस्ता मर गए।
मजाक फरमा रहे।
अब मुझे बताओ कि क्या हुआ।
असल में मुझे अपने वतन की बहुत याद आ रही है। ये और बात है कि दोस्तों की मोहब्बत में शामिल हाल हैं, लेकिन उसके बावजूद अभी तक सबसे बेतकल्लुफ नहीं हो पाया हूँ। उस्ताद ही वजह फरमा रहे हैं, इस 4 साल की मुद्दत में अभी भी ऐसे कुछ काम करता हूँ जो सही नहीं है। चंद उस कबल सड़क पर जना मनुचेरी ने मुझे गिरफ्तार कर लिया था। अगर उस्ताद मेरी मदद को न पहुँचते तो इस वक्त मैं थाने में होता।
बच्चों जरा ठहरो, ऐसा लगता है कि तुम भी समझ नहीं पाए कि यह क्या कहना चाहता है। इसका मकसद यह हरगिज़ नहीं कि खुदा ना खासा ये लैला के कत्ल में मुलव्वस था। इसका मकसद यह है कि चूंकि ये हमारे कल्चर को सही तरह से नहीं पहचानता, इसलिए मुश्किल में है। मोहम्मद अली बैठो। इस वक्त तुमसे एक से ज्यादा मसले पर गुफ्तगू करना चाहता हूं। तुम्हें क्या लगता है कि हम अपनी यूनिवर्सिटियों में क्यों इल्म पैदा करने के बजाय इल्म की तकलीद करते हैं? क्यों हमारे एतबार से वो ज्यादा दानिशमंद है जिसने एलिमेंट्स के टेबल रटे हों, जबकि हकीकी दानिशवर वो है जिसने इस टेबल को बनाया है?
हमीद मुरादी, इसका एप्लीकेशन लिख रही हो?
हाँ भाई, क्या इसको जाना नहीं है?
जाना तो तय है, लेकिन मुझसे हमांगी के बगैर नहीं।
अब हमांगी जरूरी नहीं है नीना, अब उसे जाने भी दो, शायद हमें जल्दी रिजल्ट मिल जाए।
कब से कबल इस वक्त काम अंजाम देने लगी हो?
नीना मेरा मूड खराब नहीं करो, क्या हो गया है तुम्हें?
क्या हुआ, फिर से बेहोश और कमजोर होना चाहती हो? तुमने अपनी दवा खा ली तो कमरे में आना, बैठ कर बात करेंगे। हमेशा कहती हूँ कि मुझसे पूछकर काम क्या करो। हमीद मुरादी को जॉर्ज के हाथों बेचना चाहती हूँ। नाजनीन, नाजनीन क्या बहरी हो गई हो? नाजनीन, 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 क्या हुआ नाजनीन? नाजनीन, नाजनीन,
उधर तरक्की याफ्ता ममालिक में मुमताज स्टूडेंट्स को ढूंढते हैं और बिल्कुल गुलामों के बाजार की मानिंद खरीदो फरोख्त करते हैं। इंटरनेट दलाली का अड्डा बन गया है। यहां भी हजारों ऐसे लोग हैं जो तुम सबको नीलाम करना चाहते हैं। पूरे मुल्क में इंजीनियरिंग करने वाला टॉपर स्टूडेंट्स जिसका परसेंटेज 97.5% और 2 बड़े प्रोजेक्ट कर रहा है, उसकी कीमत कुछ ज्यादा ही होगी। अगर तुम्हारे माँ बाप ना हो तो तुम्हारी वैल्यू कुछ और बढ़ जाएगी। जितनी ज्यादा बेहयाई और वतन से गद्दारी का मुजाहरा करोगे उतनी कीमत बढ़ेगी। लेकिन दोस्तों, इसमें से तुम्हें कुछ भी नहीं मिलने वाला।
गुलामी करना तो बंदे होने की बनिस्बत बहुत बेहतर है। यहाँ गुलाम बनना होगा, ना कि बंदा।
शाबाश, मुझे अच्छा लगा कि किसी एक ने तो लगकुशाई की, किसी ने मुखालफत की। लेकिन नहीं बेटा, ऐसा नहीं। यहाँ तुम किसी के बंदे नहीं हो, तुम खुद अपनी हठधर्मी के बंदे हो। फौरन यकीन करते हो, जल्दी गुस्से में आते हो, जल्दबाजी में फैसला करते हो, जो सबसे बदतर है।
हमेशा की तरह खुद ही जज बन गए। चलिए, आप सही कह रहे हैं।
फरीद, बस भी करो भाई।
नहीं अमित, इसे कहने दो। मुझे मालूम है इसके दिल में क्या है। तुम्हें क्लास से जाने की इजाजत नहीं दूंगा।
मेरे लिए कोई अहमियत नहीं।
लेकिन मेरे लिए अहमियत रखता है कि तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो। कम से कम एक बार मेरी बात सुनो। मैं ना तो तुम्हें बैरून मुल्क जाने की इजाजत दूंगा, ना मिस रेहाना बेगी को। रेहाना बेगी मेरी बेटी है, मेरी मुंह बोली बेटी। इस पर हक के पिदरी रखता हूं मैं। इसके बारे में किसी दूसरे को फैसला करने की इजाजत नहीं दूंगा।
नाजनीन, नाजनीन डियर, प्लीज बैठो। नाजनीन, अल्लाह, क्या गलती हो गई। ये लो, पियो। नाजनीन, नाजनीन मुंह खोलो। नाजनीन, नाजनीन प्लीज मुंह खोलो। नाजनीन खोलो ना। लो लो ये पानी, पानी पानी पियो। उठो उठो अच्छी बच्ची।
जनाब फरीद तुफंगची, मेरे ख्याल में तुम्हें मुताजिब होना ही चाहिए, क्योंकि तुम्हें हक है कि शिकवा करो कि अब तक क्यों नहीं बताया मुझे। लेकिन ना तो तुम्हें और ना ही किसी दूसरे को हरगिज इस बात की इजाजत दूंगा कि तुम बंद लगाओ और फौरन ही फैसला कर बैठो, वो भी मसले को जाने बगैर। न सिर्फ मेरे बारे में जो तुम्हारा उस्ताद और दोस्त है, बल्कि अपने दुश्मनों के बारे में ये तोहमत लगाना हरगिज हमारे दरमियान राज नहीं होना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि किसी के बारे में कोई फैसला करना बहुत आसान है। उस वक्त के जब चोरी और गबन जैसी तोहमतें जनाब डॉक्टर जाबरी पर लगाई जा रही थी, मैंने उसकी मुखालफत की थी, चूंकि तुम नहीं जानते थे, जोश में आ गए थे। हाँ, हक लिया जाता है, लेकिन इसके लिए यकीन हासिल होना शर्त है। जब यकीन हो जाए, उस वक्त इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की तरह अपनी जान भी दे सकते हो, लेकिन सिर्फ यकीन की सूरत में। तुम्हारी क्लास का टाइम काफी पहले खत्म हो चुका है, अब जा सकते हो।
रेहाना, तुम बहुत बुरी हो।
मैं जानती हूँ क्या कहना चाहती हो, लेकिन खुदा की कसम मैं खुद भी अब तक उलझी हुई थी।
कैसे तुमने इतने दिनों तक मुझसे छुपा लिया?
अभी इसका वक्त नहीं है, कभी और इस बारे में एक साथ बात करेंगे। बाद में तुम्हें देखूंगी।
निगार साहबा, सलाम का जवाब वाजिब है।
तुम्हारे सलाम का जवाब नहीं दूंगी, क्योंकि तुम भी तो यही करता है।
अभी सुलेमानी साहब ने कहा, जब तक किसी चीज के बारे में यकीन ना हो जाए फैसला ना करो। लेकिन तुम मेरे बारे में बार बार गलत फैसला कर रही हो।
माशाल्लाह, कितनी जल्दी बात समझकर दलील पेश कर रहे हो। क्या बता सकते हो कि मैंने किस सिलसिले में फैसला किया?
कहने की जरूरत नहीं है, तुम्हें खुद पता है।
मुझे तुम्हारी गलती का यकीन है, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। तुम अपने बाहर जाने के काम भी अंजाम देने लगे, ये सोचा भी नहीं कि निगार कौन है। आदमी भी है, आना चाहती है तो ठीक है, वरना भाड़ में जाए।
ये कैसी बात कर रही हो? मैंने तुमसे कहा था, लेकिन तुमने संजीदा लिया नहीं। देखो निगार, मैं अपनी जिंदगी के आखिर तक यहाँ डॉक्टर खुदा के पीछे नहीं दौड़ सकता, क्या मुमकिन है?
नहीं, ऐसा लगता है कि तुम अपना फैसला कर चुके हो, तुम नहीं कर सकते। हमीद सुलेमानी सर वो जो बातें कर रहे थे वो मुझसे नहीं कर रहे थे, तुमसे और शाहीन से मुखातिब थे। मेरी समझ में नहीं आता कि कल तक तो तुम इस शाहीन से नफरत करते थे और अब उसके मुरीद बन गए हो।
मैं किसी का मुरीद नहीं हूँ, मैं सिर्फ अपनी किस्मत आजमाना चाहता हूँ। तुम भी हम सबको मिलने वाले इस बेहतरीन मौके से वाकिफ नहीं हो, सुनने को भी तैयार नहीं हो?
मैं नहीं सुनना चाहती क्योंकि मैं जानती हूँ कि तुम्हारे दिमाग में क्या खिचड़ी पक रही है। तुम्हारी आदत है कि जो सोच लेते हो तुम उसी को कर दिखाते हो। कुछ अरसा कबल अपनी रिसर्च पर दिन रात काम किया, आखिर में उसका नतीजा देख लिया। 2 साल पहले शादी करने की बात की, मैंने बार बार कहा कि अभी जल्दी है, तालीम मुकम्मल कर ले दो, लेकिन तुमने इतना इसरार किया कि मैंने हाँ कर दी। इस वक्त भी मुझे पता है कि तुम जाने के लिए तैयार हो।
हाँ, ये बात मेरे दिमाग बैठ चुकी है और अब निकलने वाली नहीं, तो क्या करो?
कुछ नहीं, बस मेरा मसला हल कर दो।
तुम्हारा मसला हल है, चलना चाहो तो चलो, नहीं तो बैठ कर यही मेरा इंतजार करो। इस बहस का कोई फायदा नहीं।
सर, ये आपने कैसे कर लिया?
क्या चीज?
क्या हमें माफ कर दें?
इन बातों को छोड़ो मोहम्मद अली, इतने लंबे आदमी को रोते देखना मेरे बस की बात नहीं। मुझे सब समझ में आई कि हुआ क्या है। मैं समझ गया कि तुम मेरी उस रात की बातें सही तौर पर समझ नहीं पाए, और शायद तुमने मेरी और रेहाना की बातें भी सुनी थी। यकीनन तुम्हारा कोई गलत मकसद नहीं था, तुम अपने दोस्तों को आगाह करना चाहते थे, तो जब तुम्हारी नीयत सही थी तो मैंने भी तुम्हें माफ कर दिया। तुम्हें याद है ना कि मैंने तुम्हें बताया था कि हर रोज भेड़ की ओजड़ी रसूल अकरम के सर मुबारक पर डाली जाती थी?
जी हाँ, याद है मुझे।
ये उससे बढ़कर तो नहीं? हमें अफो दरगुजर करना सीखना होगा। नहीं मालूम क्यों इस नेक सिफत से हम दूर हैं। इंतकाम जो ही किसी भी इंसान की सबसे बुरी सिफत है। मैं इस नौजवान से शर्मिंदा भी हुआ।
सर आपको मुझे माफ करना चाहिए। इजाजत दीजिए।
मोहम्मद अली, सारे स्टूडेंट्स को बास्केटबॉल के फील्ड में जमा करो, हम बहुत सी चीजों में पीछे रह गए।
ओके सर, मैं सबको बुला लेता हूँ।
निगार, आखिर तुमने ये बात क्यों कही? हमीद को मैं जानती हूँ, वो अपनी जिद से बाज नहीं आने वाला और मैं उसके साथ जाऊंगी नहीं। मुझे अभी 5 साल और पढ़ना होगा ताकि PhD मुकम्मल हो, उसके बाद बैठ के उनका इंतजार करूँ, और वो भी किसके लिए? हमीद के लिए। 5 दिनों में सारी बातें भुला देगा, 5 साल तो बहुत दूर की बात है।
तुमने तो इन बातों से उसका काम आसान बना दिया है, तुम्हें ये बातें करनी ही नहीं चाहिए।
वो मेरा मकसद समझ ही नहीं पाया। उसका ये कहना है कि या तो मैं उसके साथ जाऊँ या फिर उसके लौटने का इंतजार करूँ, तलाक का सोच ही नहीं रहा।
ये तो बहुत अच्छी बात है, इसका मतलब है कि वो तुमसे मोहब्बत करता है।
मोहब्बत? अगर मसला मोहब्बत का है तो तुम अपने मिस्टर फरीद को क्यों नहीं रोकती?
देखो, मैंने उससे बात की है, वो नहीं जा सकता, यानी अगर चाहे तभी नहीं जा सकता। उसके बाप, उसकी अम्मी, उसकी बहन, इन लोगों की वजह से वो रह रहा है। तुम्हें तो खुद ही उसके फैमिली पोजीशन के बारे में मालूम है।
तुम कितनी बेवकूफ़ लड़की, इन लोगों के आपस में गुफ्तगु हो चुकी है, फिर भी तुम सोचती हो कि हमीद अकेला जाएगा? ये तो एक दूसरे के बगैर पानी नहीं पीते।
तो अब परेशान क्यों हो रही हो? फरीद जाएगा नहीं तो हमीद भी खुद ब खुद रुक जाएगा।
आखिर तुम्हें समझ में क्यों नहीं आता वो लोग जाना चाह रहे हैं?
क्यों नहीं अब समझी? क्या ये मुमकिन है वो कूड़ा ना डालो इसमें?
मेरे आसाब खराब है ना।
इसमें से आधा पैसा साइकोलॉजिस्ट को दे दो, वो दवा दे देगा, तुम ठीक हो जाओगी।
अपनी दवाएं हर रोज क्यों नहीं खाती? दवा खा लेने के बाद बदन अकड़ने लगता है और फिर कोई काम नहीं कर सकती।
मुझे तो तुमने डरा दिया, खुद तुम्हारे लिए भी अच्छा नहीं है, कभी तुम्हें नुकसान हो सकता है। घर जाना चाहती हो?
नहीं, ठीक हूँ।
देखो नाजनीन, मैंने हमीद मुरादी हूँ उसके दोस्त के लिए एक अच्छा कस्टमर ढूंढ निकाला है। तुम पहचानती हो जॉर्ज, अमेरिका में हमारा राबिता।
लेकिन मैंने हमीद के लिए कनाडा का फॉर्म भरा है।
क्या क्या? जानती भी हो कि इस तरह तुमने कितना नुकसान पहुंचा दिया। जितने वो गैर अहम है उनका प्रोजेक्ट उतना ही अहम है। प्लीज इसके बाद से मेरी इत्तला के बगैर कोई काम अंजाम ना देना।
सलाम अलैकुम मीजान।
वालेकुम सलाम। ये कपड़े टांगने की जगह नहीं है।
मालूम है मुझे दोबारा वापस जाना है।
कहाँ का इरादा है? इंशाल्लाह कनाडा का इरादा तो नहीं है बगैर खुदा हाफिजी के।
इधर आप भी निगार की तरह क्यों तंजिया बातें करने लगी हैं? अगर कोई मुश्किल है तो आइए बैठ कर साथ में हल कर लेते हैं। आप अपनी बात कह चुकी हैं, अब मैं अपनी बात करना चाहता हूँ।
बताओ।
आज मैंने यूनिवर्सिटी में निगार से बात की, वो मेरी बात सुनना ही नहीं चाहती। क्या ये सही है?
अच्छा तो फिर
ये तो कोई बात नहीं हुई, ये बताएं क्या सही है?
नहीं, सही नहीं है। अपनी बातें कहो, मैं सुन रही हूँ।
मेरा ये मानना है कि जब कई महीनों से इस ऑफिस से उस ऑफिस, VC का ऑफिस से मातहत के ऑफिस तक बास्केटबॉल की तरह इधर से उधर भेजा जा रहा हूँ, जब मुझे मेरे शायन शान मकाम नहीं मिल रहा है तो क्यों फालतू में इनके उनके पीछे दौड़ूं?
पीछे ना पड़ूं?
अम्मी जाने मुमकिन नहीं है। मैं जो कि कभी लेबोरेटरी से बाहर नहीं आता था, अब मेरा काम में दिल नहीं लगता। अब तो मुकम्मल यकीन हो गया कि जाबरी और खुदाई हम सबको फेल कर देंगे।
नहीं, میں خود ایک ٹیچر ہوں، یہ باتیں کسی بھی ٹیچر کے شایع نشان نہیں ہیں۔
وہ لوگ عہدہ و منصب کی تلاش میں ہیں، آپ کی طرح نہیں ہیں،
اسی لیے ایران سے جانا چاہتے ہیں۔
یہ کوئی کم وجہ نہیں ہے، یہاں کچھ لوگ ہمیں پڑھنے نہیں دیتے، پڑھائی کا ماحول بالکل ختم کر دیا ان لوگوں نے۔
ذرا رکو، یہ تم لوگوں کی کمی ہے نہ کہ یونیورسٹی کی۔ کیوں ہر چیز کے لیے اتنا ہنگامہ مچاتے ہیں؟
کیونکہ ہماری باتیں نہیں سنی جاتی، ورنہ ہم پاگل تو نہیں ہیں۔
خدا نہ کرے، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ کلاسیں نہ ہوں۔ اگر کبھی 10 منٹ میں لیٹ ہو جاتی ہوں تو اسٹوڈینٹس کلاس سے چلے جاتے ہیں۔ دوسری مشکل کیا ہے؟
میں ترقی کرنا چاہتا ہوں، میں اسی حال پر اکتفا نہیں چاہتا۔
کیا کسی نے روکا ہے تمہیں؟
آپ اگر میری بھلائی چاہتی ہیں تو میری اتنی مخالفت کیوں کرتی ہیں؟
بیٹے، میں تمہاری مخالف نہیں ہوں، میرا کہنا ہے کہ خدا کے فضل سے تم یہاں بھی ترقی کر سکتے ہو، کام کر سکتے ہو، شادی بھی کر چکے ہو، اپنے لیے ایک مناسب زندگی تیار کر سکتے ہو۔ کس لیے سب کچھ چھوڑ کر باہر جانا چاہتے ہو، جہاں پہنچتے ہی تمہاری توہین ہوگی یا پھر خدا نخواستہ ایک گھٹیا کام دے دیا جائے گا؟
نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، میں بھی پہلے آپ کی طرح سوچتا، لیکن میں تحقیق کی تو پتہ چلا کہ ایسا کچھ نہیں۔ میرے اور فرید جیسے لوگوں کا بہت ہی احترام کیا جاتا ہے، آپ کی معلومات غلط ہیں۔
اس لڑکی کی اطلاع صحیح ہے نا؟ جو کچھ ہم کہیں وہ غلط اور برا ہے، مطلب یہ کہ میری اور نگار کی سمجھ میں کچھ نہیں
آتا۔ لڑکی کو کیوں بیچ میں لا رہی ہیں؟ وہ صرف ایک واسطے کی حیثیت رکھتی ہے۔ میں اگر نگار سے کہتا ہوں کہ میرے ساتھ چلے تو اس لیے کہ اس کے حالات میرے جیسے، نہ کوئی خرچ آئے گا نہ ہی کچھ، اور آپ کو یقین نہیں ہوگا کہ ہمارے سارے اخراجات وہ خود دیں گے۔
کس لیے؟ اب تک کبھی خود سے پوچھا تم نے کہ کیوں؟
شاید میں ان کے لیے اہم ہوں گا۔
ہاں سچ بولتے ہیں، وہ تم اہم ہو، کیونکہ میں نے بچہ پیدا کیا ہے، میں نے اسے پالا پوسا ہے، 15 سال کی عمر سے ایک یتیم بچے کو پال رہی ہوں، اسے اسکول لے گئی، خود کلاس میں گئی، کوچنگ لگوائی تاکہ تمہارا ایڈمیشن ایک اچھے اسکول میں ہو سکے، تمہیں انٹرنس کی تیاری کے لیے کوچنگ بھیجا، تمہارا ہر طرح سے خیال رکھا۔ تب یہ لوگ کہاں تھے؟ اس وقت وہ لوگ کہاں تھے؟ اب جب کہ بڑے ہو گئے ہو، اہم ہو گئے ہو، تو فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں۔ تم بھی کہتے ہو کہ ٹھیک ہے، تو پھر میں کیا؟ تمہارے والد کیا؟ ملک کے بارے میں سوچا؟ ایک وہ زمانہ تھا جب اس شہر میں رات کے وقت چند گھنٹے بجلی رہتی تھی، اگر 2-4 غیرت مند انجینئر نہ ہوتے تو وہی کنڈیشن اب بھی ہوتی۔ اب تم جانا چاہتے ہو چونکہ تمہیں آفر دیا گیا۔
ہمیشہ کے لیے نہیں جا رہا ہوں، جا رہا ہوں ڈاکٹریٹ کر کے واپس آ جاؤں، آپ کو بھی 6 مہینے بلا لوں گا۔
میں اب بھی ٹیچر ہوں، یہاں میتھس پڑھاتی ہوں، وہاں جا کر کیا کروں گی؟ ویٹریس بن جاؤں تو ٹھیک رہے گا۔
خدا نہ کرے ایسا ہو، اب تک آپ نے زحمت کی، اب میں محنت کروں گا۔
لگتا ہے تم میری باتیں نہیں سمجھ رہے ہو۔ میں اس بات سے خوش تھی کہ اپنے بیٹے کے پروجیکٹ سے بجلی میں بچت ہوگی، لگتا ہے ہمیں اپنے بچوں کو بڑا کر کے غیر ملکیوں کے حوالے کرنا ہوگا تاکہ وہ ہمارے پروجیکٹ سیف روک کر دیں۔ آپ بھی
بالکل ڈاکٹر سلیمانی کی طرح باتیں کر رہی ہیں، یہ باتیں آپ مجھ سے نہ کہیں بلکہ ڈاکٹر جابری اور ڈاکٹر خدائی کو سمجھائیں۔
اگر وہ لوگ یہ نہیں سمجھ رہے تو یقیناً خیانت کار ہیں۔
مجھے ان کے بارے میں نہیں معلوم کہ وہ کیا ہے، میں صرف یہ جانتا ہوں کہ مجھے ترقی کرنا، میں اپنی پوری عمر اس کو اس کو سمجھانے میں نہیں گزارنا چاہتا۔
کہاں،
خدا حافظ، کچھ کام۔
اب تم جانو، میں اپنی ساری باتیں کہہ چکی، اب تمہارا ضمیر تمہیں اجازت دے تو چلے جاؤ، لیکن نگار نہیں جائے گی، اس کا مسئلہ حل کرو، اس نے خود یہ بات مجھ سے کہی ہے۔
اس کا مسئلہ واضح ہے، اسے میرے آنے تک انتظار کرنا ہوگا۔
عقل مند لڑکے، وہ نہیں آئے گی، اسے طلاق دینا ہوگا۔
طلاق؟ ہمیں نکاح ہوئے ابھی صرف 6 مہینے ہوئے ہیں۔
جو بھی ہو، یہ خود نگار کی خواہش ہے، یا یہیں رہو گے یا اسے طلاق دو گے، اس بارے میں تم سوچو۔
پتا نہیں کیوں نگار کو مجھ پر اتنا دباؤ ڈالنے میں کیوں مزہ آتا ہے، اسے بھی میرے ساتھ آنا چاہیے۔
اسے انتخاب کا حق نہیں ہے؟
کیوں نہیں ہے؟
وہ نہیں جانا چاہتی، تم جاؤ اور سوچو۔
ٹھیک ہے۔
گیا؟
ہاں سنا تو ہوگا، جو بھی ہو سکتا تھا اسے کہہ۔
اگر جانا چاہے تو؟
ہم اسے نہیں روک سکتے، تم بھی اس کے ساتھ چلی جاؤ۔
نہیں جا سکتی، مجھے یقین ہے کہ وہاں نہیں رہ سکتی ہوں۔
رو نہیں، خدا مددگار ہے۔
کیوں ہم نے شادی کی؟ کیوں؟ بہت مشکل۔
پریشان نہ ہو، میں پھر اس سے بات کروں گی۔
نہیں، آپ کو اس سے بات کرنے کی ضرورت نہیں، میں نہیں چاہتی کہ وہ میری وجہ سے رکے۔
کیوں؟
کیونکہ اس طرح عمر بھر یہی سوچے گا کہ کیوں نہیں گیا۔ خدا حافظ۔
رکو، جب طبیعت ٹھیک ہو جائے تب جانا۔
شکریہ، میں ٹھیک ہوں، مجھے کام سے جانا ہے۔
کاش وہ تمہاری قدر کرتا۔